इसको टॉयलेट में ले जाने के लिए दो आदमी की जरूरत पड़ेगी बुढ़ापा में। तो जब तक शक्ति है देह में तब तक दूसरे का हित कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर की शक्ति चली जाती है और बच्चे स्त्री भी छूट जाते हैं। बच्चा तो आजकल तो जब तक बच्चा है तब तक उससे कुछ करा सकते हैं, नहीं तो सयाना हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तो कुछ सुनेगा ही नहीं। इसीलिए महाभारत में लिखा गया है कि अपने बच्चों को 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। लालन का अर्थ है प्यार करना, और 5 से 10 वर्ष के बीच में थोड़ा थोड़ा उसे डांटना चाहिए, हल्का डांट डपट करके रख। ऐसे तो ताडेत शब्द लिखा गया, कभी जरूरत पड़े तो पीठ पर एक तमाचा मारा जा सकता है, यहां तो कर नहीं सकते। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रो अदाचरित, लेकिन जब बच्चा 15-16 वर्ष का हो जाए तो उसको पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए, और उसे कठोर नहीं बोलना चाहिए। मारने की तो बात ही नहीं है, मारने जाएंगे वही पटक देगा उठा, उसकी उमड़ती हुई जवानी रहती है तो अब क्या करेंगे तो मेरे कहने का आशय है कि जब तक किसी का बच्चा उसके अधीन है, पत्नी अपनी आज्ञाकारिणी है और वो भी स्वस्थ है सुखी है, धन भी भगवान की कृपा से कुछ है, अपना शरीर भी ठीक से काम कर रहा है, तो उसी समय दूसरे का हित कर लेना चाहिए। नहीं तो ये क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर का अर्थ है कुछ ही दिनों में वर्षों में ये सब समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है पारक्य, ये आत्मा के स्वरूप नहीं है, अंततः ये दूसरे के हैं, ये दूसरे का धन हमारे पास रखा हुआ है, अपना शरीर और स्वजनों का शरीर तथा धन ये दूसरे के लिए है, इसको पारक्य कहते हैं। शरीर किसके लिए है? कुत्ते और गिद्ध सियार के लिए, वो उसका धन है, चाहे अग्नि का है। भागवत में एक श्लोक में विचार किया गया है, देह किमन न दातु स्वम निषेक्तुर मातु रे वचर मातुर पितुर व बलिनो निषेक्तुर मातुर पितुर व बलिनो क्रेतुर अग्नि सुनो पिवा। यह देह किसका है विचार किया गया है, यह कॉमन प्रॉपर्टी है, ये किसी एक का नहीं है। ये देह जो है किसी का, कोई नहीं कह सकता कि मेरा देह है। देह किमन न दातु स्वम, नारद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई अन्न खिला रहा है, भोजन दे रहा है, भोजन से ही शरीर बढ़ा हुआ है, तो कह सकता है कि मैंने भोजन दिया है इसलिए मेरे भोजन द्वारा पुष्ट यह देह मेरा है, और मान लीजिए मानता भी है मेरा देह, मैं खिलाया हूं इसको। अच्छा, माँ पिता इसको जन्म देता है, मतलब तो पिता का अंश है, तो पिता कहता है कि ये मेरा है, कुछ दिन तक तो कहता भी है और पुत्र भी लिखता है, कम से कम झूठा भी लिखता है, नहीं सही लिखता है लेकिन मानता नहीं है। तुम किसके हो, तुम्हारा फादर कौन है, तो फॉर्म भरने में चाहे कहीं जरूरत पड़ ही जाती है तो लिखता है किसका पुत्र हो, मेरे पिता ये, तो पिता मानता है कि यह देह मेरा है क्योंकि उसका अंश है। मां मानती है कि नहीं, मेरे उदर में ये रहा था इसलिए मेरा है। कुछ ही वर्ष के बाद जब विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है कि मेरा देह है ना, सीधा कहती है ये देह मेरा है। और पति कहता भी, लोक में कहावत भी कहते भी हैं कि उसने उसका हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा है मतलब मेरा मेरी है, दोनों में मेरा मेरी का तो बहुत बंधन हो जाता है, ये मेरा है ये मेरी है। और उस समय पिता आदि का संबंध शिथिल देखा जाता है, जो पहले विवाह के पहले जानता ही नहीं था कि किसकी बनेगी, तो मेरा 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 पिता माता करते रहते। और कहीं अगर व्यक्ति किसी जॉब में चला गया, नौकरी में चला गया, तो स्टाफ वाले कहते ही मेरा स्टाफ है, मेरी कंपनी का है, कहते हैं ना मेरा स्टाफ। तो इस तरह कई लोग इस शरीर पर दावा करते हैं जन्म से लेकर के मरण तक। तो कोई अगर जबरदस्ती काम कराता है तो कहता है कि ये मेरा है, अथवा कोई खरीद लेता है इस देह को, देह को खरीद लेता है। खरीदने का मतलब यह है कि कुछ पैसा देकर उसे काम कराता है, तो कहता है कि मैंने इसको पैसा दिया इसलिए यह देह इतना घंटे के लिए मेरा है, मेरा काम करेगा। सेना में जो भर्ती होते हैं जवान, सरकार कहती है सब मेरे हैं, इन्हें लड़ना पड़ता है या काम करना पड़ता है, तो पैसा देकर खरीद लेते हैं, इसको क्रेतु कहते हैं। लेकिन कोई कुछ भी हो, माँ कुछ दिन अपने गोद में इस शरीर को रखी, पिताजी रखे, पत्नी रखी अपने साथ, और भी स्टाफ में हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अंत में किसके पास जाएगा, लास्ट में कौन कंज्यूम करेगा? क्रेतु, अग्नि है, सुनो पिवा, या तो आग अथवा कुत्ता है। यदि हिंदू होगा तो अग्नि देवता इसको अंत में कंज्यूम करेंगे, ये माना जाएगा कि फाइनल अग्नि का था ये। क्योंकि कोई भी वस्तु घूमते घामते लास्ट में जिसके उपभोग में आएगी वो वस्तु उसी की मानी जाएगी, ये नियम है। किसी वस्तु के लिए चाहे कोई कितना भी पैकेट बना रहे, पैकेज खूब सुंदर सुंदर दुकान में रखा है, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, लेकिन जो खरीदेगा भोगेगा वही उसका भोक्ता माना जाता है। तो लास्ट में ये शरीर किसके काम आएगा? जब शरीर मर जाता है तो इसको कौन भोगता है? स्वाभाविक मरे हुए शरीर को अगर फेंक दिया जाए तो सबसे पहला भोक्ता इसके पास कुत्ता आता है। उसे ओ यह शरीर बहुत नाम लिया, इसका नाम प्रोफेसर बना, इसका नाम इंजीनियर बना, इसका नाम पांडे मिश्रा, लेकिन अंत में हमारा भोजन आ गया, तो कुत्तों और सियार का भोजन होता है। अथवा यदि स्वजन जला दिए इसको तो अग्नि का भोजन बन गया, और नहीं तो कीड़े जमीन में खाएंगे कब्र में जाने पर। यही शरीर की गति, इसको पारक्य कहते हैं। अंततः यह शरीर दूसरे का है, दूसरे के काम में आएगा, ये आत्मा के काम में नहीं आएगा। आत्मा को तो दुख देने के लिए दिया गया है, आत्मा नहीं कह सकता है कि ये देह मेरा है, क्योंकि आत्मा को अधोगति में डालने के लिए देह दिया गया है कि सुख दुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव करे। और दूसरे जो स्वजन है उनका तो है ही नहीं, कुछ बरस तक कोई कहता है मेरा है मेरा है, इसके बाद तब तक दूसरा कहना चालू करता है। वस्तु एक ही है लेकिन उस पर मेरा मेरी का कितना स्टैंप लगता है, ये मेरा है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अंत में कुत्ता का स्थायी अधिकार होता है, ये मेरा है। तो कभी कभी कुत्ते सोचते होंगे ठीक है तुम घूमो इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, लेकिन ये कपड़ा पहनना मतलब कुत्ता के भोजन का पैकेज है, ठीक है घूमो लेकिन एक दिन कंज्यूम करेंगे भोगेंगे। देखिए चाहे राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे किसी बहुत बड़े ब्राह्मण का, वो शरीर गली में मरा हुआ फेंक दिया जाए तो कुत्ते खाने में तनिक हिचक नहीं करेंगे कि नहीं राष्ट्रपति थे नहीं टच करना चाहिए, नहीं वो खाएंगे ही क्योंकि उनका है, वो निर्वाध किसी से परमिशन नहीं लेंगे, वे ये डॉक्यूमेंट बनाओ ये कागज बनाओ तब खाएंगे, नहीं वो सीधा। इसलिए शरीर को स्वजनों को और धन आदि को, धन भी परक्य है, ये धन जो आदमी कमा रहा है, आज मैं बात कर रहा था कि धनी हो चाहे गरीब हो, अमेरिका में देख रहा हूं सब एक ही समान खा रहे, सामान्य भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और कितना भी धनी हो ड्राइविंग स्वयं कर रहा है। ये धन दूसरे का है, उसे भोग नहीं पाएंगे, पारक है दूसरे लोग ले लेते हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं मतलब या तो लड़का ले लेगा या कोई और ले लेगा या सरकार ले लेगी चाहे चोर बदमाश ले लेंगे, ये पारक क्या है। इसीलिए इसका उपयोग जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो आखिर दूसरे लोग ले ही नहीं। तो दाय भाग कहते इनहेरिटेंस, अपने आप सरकार भी अपने पुत्र के नाम से कर देगी धन को अपने आप, कितने लोग बैंक में रुपया छोड़ करके मर जाते हैं, बहुत भारी भारी रुपया। एक बार कह रहे थे दादा जीवन प्रभु कि कोई माता जी थी, उनके पास 3 बिल्लियां थी, 3 बिल्लियों के लिए एक एक घर और डेढ़ डेढ़ के एक एक मिलियन डॉलर छोड़ करके मारी थी उनके नाम से, बिल्लियों के नाम से। तो बिल्लियां तो कोई खर्च करेंगे नहीं, लेकिन उनकी देख रेख करने वाले लोग बिल्लियों के लिए इतना रुपए खर्च की, एक एक मिलियन डॉलर दी थी 3 बिल्ली के लिए। तो धन परख के उसे के हाथ में चला गया। तो धन स्वजन या देह सब क्षण भंगुर है और दूसरे का है, अतः इसके द्वारा उपकार करना चाहिए। इतना कह करके एवं कृतव्य वसित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह निर्णय करके, यह बात कह करके अथर्व के पुत्र दधीची मुनि अपने को भगवान के पास ले गए। परे भगवती ब्रह्मणी आत्मानं संनयन जहौ तनुं जहौ, अपने को भगवान के पास ले जाकर के इस शरीर को छोड़ दिए। इसका अर्थ है कि उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और चिंतन द्वारा भगवान की लीला में पहुंच गए। संनयन इस श्लोक पर भी श्रील प्रभुपाद बहुत प्रकट लिखे, जीव भगवान में मिलता नहीं है, वास्तव में भगवान के पास जाता है। इसलिए यहां लिखा गया है कि परे भगवती ब्रह्मणी आत्मानं संनयन, संनयन का अर्थ सम्यक ले गए। उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान का पार्षद हूं, भगवान का दास हूं, यह सोचते हुए भगवान की लीला में अपने मन को रखे, उनकी सेवा में, और इस तरह तनुम जहो शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए। कैसे शरीर छोड़े इसको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। जताक्षासु मनोबुद्धि, पहले उन्होंने अपने प्राण को, प्राणवायु को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को बिल्कुल जत जत का अर्थ कंट्रोल में ले लिया। आंख से कुछ देख नहीं रहे थे, कान से सुन नहीं रहे थे, और नासिका से सुन नहीं रहे थे, इंद्रियों की बाह्य वृत्ति खत्म हो गई। तत्वदृ उनकी दृष्टि वास्तविकता पर अर्थात भगवान पर हो गई, ध्वस्त बंधन, और इसलिए उपाधि खत्म हो गई, कर्म बंधन समाप्त हो गया। अस्थित परमम योगम, परम योग में अर्थात भक्ति योग में अस्थित हो गए। देहम न देहम बुद्धे गतम, कब देह चला गया उनको पता भी नहीं चला। भागवत में लिखा गया है कि भक्तों को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, उनकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे मदिरा मदांध व्यक्ति कभी कभी ये भी नहीं जानता है कि वस्त्र कब गिर गया मेरा, शराब के नशे में उसको पता नहीं लगता है, कभी कभी नग्न घूमा करता है, उसको पता नहीं होता है कि वस्त्र नहीं पहने। उसी तरह से जो व्यक्ति परम योग में होता है, भक्ति में, तो भगवान में उसका मन लग जाता है, कब देह गिरा क्या हुआ पता भी नहीं चलता। दधीची मुनि को पता भी नहीं चला कि उनका देह कब गया, इतना भगवान में मन लगा हुआ था। तो वे तो भगवान का पार्षद बन गए, चले गए वैकुंठ धाम, और बाद में देवता लोग उनके शरीर को लिए। एक कामधेनु गाय आई जो उनके चमड़े को हटाया चाट चाट करके, और इसके बाद उनके हड्डी को देवता लोग विमान से ले गए स्वर्ग। क्या सौभाग्य दधीची मुनि, किसकी हड्डी को कोई ले जाएगा स्वर्ग में, यहां तो श्मशान में ले जाते लेकिन दधीची मुनि के अस्थि को विमान से देवता ले गए स्वर्ग। और देवताओं के जो शिल्पी हैं, कारीगर विश्वकर्मा जी, उन्होंने उनके अस्थियों से, हड्डी से वज्र नाम का आयुध बनाया, और इसके साथ साथ और भी थोड़ा थोड़ा बनाया, धनुष भी बनाए। इस तरह से दधीची मुनि ने देह त्याग किया। श्रील प्रभुपाद इन दो श्लोकों पर भी बहुत विस्तार से प्रकट लिखते हैं। ये है शरीर छोड़ने की विधि, कि भगवान में मन लगा करके इंद्रियों से और कुछ न देखते हुए, और आत्मा को ले जाए व्यक्ति भगवान के चरण कमल, उनके सेवक के रूप में, और देह छोड़ दे। दधीचि मुनि ने इस तरह देह त्याग किया। यह प्रसंग महाराज परीक्षित को कितना उत्साहित करता होगा, वो भी शरीर छोड़ने वाले हैं। अब वो 4-5 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले थे। ये सब प्रसंग सुनकर महाराज परीक्षित का बहुत उत्साह बढ़ता था। तो साफ पता चलता है कि देह आत्मा से भिन्न चीज है, इसको त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। देह को त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, जैसे वस्त्र को बदलने में कोई कठिनाई नहीं, और बल्कि मनुष्य वस्त्र बदलने में आनंद का अनुभव करता है। यदि पुराना वस्त्र कोई कहे कि ये दे दीजिए हमको, नया लीजिए इससे भी सुंदर, तो तुरंत ले लेगा, ठीक है ठीक बदलो। लेकिन देह कितना भी पुराना हो जाए, वृद्ध हो जाए, सड़ जाए, इसको जीव बदलना नहीं चाहता, तो काया कलप करवाना चाहता है। ये औषधि खाना है, वो मंत्र बोलना है, ये करना है जिससे हम हमेशा जीवित रहें। देह पारक है क्षण भंगुर। तो दधीचि मुनि इस तरह देह त्याग कर भगवान के धाम चले गए और उनके देह से वज्र का निर्माण हुआ। सब भगवान के डायरेक्शन में सब हुआ। तब भगवान इंद्र, जो वृत्रासुर से इतना डर गए थे देवताओं के साथ, वे वज्र लेकर पुनः वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए आएंगे। यहां से हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। तो आरती होगी ना 7 बजे। पूछ लीजिए जब तक शंख नहीं बजा है तब तक। आपका स्वागत है, न्यू ऑर्लियंस से आए, ये भागवत कराते हैं वहां पर। मेरा हर एक सर भागवत बालाजी और जगदीश बंसल जी, बहुत धन्यवाद आप आए कथा में।